તારીખ 4/2/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સંગ પ્રવચન નંબર 604
સંકોચ રહેતા હે નહીં નહીં હૈ તો સંકોચ ભી હો સકતા હૈ પોસિબલ હૈ સ્વાભાવિક હૈ ઠીક હૈ फिर से मैं पढ़ता हूं। अंतर ज्ञान से स्मरण करने पर ऐसा कोई समय जानने में नहीं आता है या स्मरण में नहीं आता है कि जिस समय में जिस काल में हमारे जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो। भूतकाल की बात है और वो परिभ्रमण के कारण जो संकल्प विकल्प है उसका रटन नहीं किया हो और उस कारण से हमें वो हमारा जीव को आत्म शांति को न भूला हो ऐसा कोई समय नहीं है। निरंतर यह स्मरण रहा करता है और उस निरंतर स्मरण रहने के कारण से महावैराग्य उत्पन्न होता है। उस स्मरण उदासीनता को प्राप्त करा देता है। इतना तीन पंक्ति का एक पैराग्राफ है। कल इसके पर चर्चा चली थी, स्वाध्याय चला था कि अंतर्ज्ञान से स्मरण करना मतलब क्या। कि अंतर्ज्ञान का मतलब वो है कि गहराई से आत्मा में से ये भाव उठा, ऊपर ऊपर से नहीं आया है। गहराई से आने से वो भाव का जहां तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वहां तक वो चालू रहेगा। जैसे अंतर्ज्ञान से आया कह रहे मेरा आत्मा ने बहुत परिभ्रमण किया है, बहुत जन्म मरण किया, अभी तक कहाँ कहाँ भटका होगा, बहुत भटका होगा। जैसे दूसरे जीव जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, सब नजर में देखने में आता है, तो मेरी भी ये हालत बहुत हो चुकी होगी, हमको इसके कारण को मिटाना चाहिए। तो क्या होता है कि इधर बहुत बड़ा सेठ होता है, संपत्ति होती है, अनेक प्रकार के की अनुकूलताएं होती है, जीव इसमें रस लेता है, उसको अच्छा लगता है, मीठा लगता है, फिर उसको वहां से जाना तो है ही नहीं, लेकिन आयु पूरा होने से जाना पड़ता है उनको। वही मकान में वो चूहा बन के कभी आता है, कभी छिपकली बन के आता है, दीवार पर चलती है, कभी कुत्ता बन के आता है, कभी बिल्ली बन के आता है, कभी क्रोधी हो तो सर्प बन के आता है, ऐसे कई प्रकार। और वहां उनको आना जाना पसंद रहता है क्योंकि वहां उनको अच्छा लगा था, लेकिन उनको मार मार के निकाल देंगे। जैसे बिल्ली आएगी तो वो दूध पी जाएगी, दूध जूठा करेगी, कुत्ता आता है तो घर गंदा होता है, और सर्प आता है तो काटने के बीच से उसको मारते हैं या पकड़ करके जंगल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से बहुत आकुलता से उनको नीच कोटि के भाव में जाना पड़ता है। ये सब हालत हमारी बहुत हो चुकी है। कोई विशिष्ट पुण्य योग से हम मनुष्य हुए, चार गति में सबसे कोई अच्छी गति है तो मनुष्य की है। क्यों? कि यहीं जन्म मरण के चक्कर से छूटने का जीव को भाव होने का अवकाश ज्यादा है। पशु पक्षी में तो कोई तिरंज गति में तो कोई धर्म का संप्रदाय है नहीं, देवगति में कोई धर्म का संप्रदाय नहीं, वहां भी संपत्ति बहुत है, फिर जाता है एक इंद्रिय में, जिसको वहां हीरे का शौक है वो हीरा के खान में चला जाता है, मोती के गहने का शौक है वो छिप में जाता है एक इंद्रिय बन करके, और फूलों का शौक है वो वनस्पति में चला जाता है, बहुभाग एक इंद्रिय होता है, जितना जिसको रस, जिस विषय का जिसको रस है कुदरत उसको वहां भेज देती है, जैसी मति वैसी गति। जैसे कोई जीव मूंग में पैदा होता है तो उसको मूंग बहुत भाता था, कोई चना का जीव होता है तो उसको चना बहुत भाता था, ऐसे जिसमें जिसकी रुचि है वहां वो पैदा हो जाता है, और वहां ज्ञान तो एकदम एक इंद्रिय दो इंद्रिय में तो एकदम ज्ञान है वो तो सिकुड़ जाता है, और अकुलाहट का तो कोई पार नहीं है, वो तो वही जानता है और सर्वज्ञ जानता है।
जो भगवान मनुष्य को मिला है, जो पोजीशन मिली है, ऐसा क्या किया हुआ कि मिली है, कैसे प्रणाम होंगे?
कुछ सरलता के कारण से मनुष्य भव होता है, सरलता के परिणाम किए होंगे। हमारे भगवान उमा स्वामी का शास्त्र है, उसमें मनुष्य गति का कारण रूप परिणाम जो दिखाया है वो सरलता दिखाया है।
किस प्रकार की सरलता?
कोई भी प्रकार की सरलता, सरलता माने सरलता। टेढ़ापन मैंने टेढ़ापन, ये टेढ़ापन करके शरीर टेढ़ा मिलता है, सभी पशु पक्षी को शरीर कैसा है? टेढ़ा। किसी का है मनुष्य जैसा? ऐसा खड़ा नहीं होता, टेढ़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो मायाचार के परिणाम की वो गति है। बहुत क्रोध करता है नरक में जाता है, बहुत लोभ करता है और फिर पुण्य के साथ वो जाता है देवलोक में, और सरलता जिसको होती है वो मनुष्य होता है। जितनी सरलता रहेगी उतना अच्छा है, धर्म पाने के लिए भी वो अच्छा है, वितरागता होने में भी वही गुण मुख्य है सरलता वाला। इसलिए जितने सरलता उतना अच्छा, जितनी सरलता उतना अच्छा, अच्छा ही है।
मंद विषय ने सरलता,
मंद विषय ने सरलता, हाँ, सहागना सुविचार, करुणा कोमलता आदि गुण प्रथम भूमि का आधार। कृपाल देव ने प्रथम भूमिका वाला मुमुक्षु के गुण लिए हैं, वो सरल होता है, सबसे सरलता बड़ा गुण है। उसमें भी मनुष्य होकर के जैन कुल में आना वो सबसे बड़ा पुण्य है, और जैन कुल में आने के बाद मुक्त होने की भावना, आत्मकल्याण की भावना होना, ये सबसे बड़ा पुण्य की निशानी है। इस क्वालिटी का पुण्य बहुत कम लोगों को होता है हमेशा के लिए, इस काल में तो है ही। लेकिन हमेशा के लिए इस क्वालिटी का पुण्य नहीं होता। निम्न क्वालिटी का पुण्य होता है तो क्या होता है? पैसा मिल जाता है, परिवार लंबा चौड़ा मिल जाता है, या कोई सत्ता मिल जाती है, राजा बन जाता है या मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उसमें पाप बढ़ जाता है। 150 साल का आयुष भोग करके मन त्रिंज गति में, पशु गति में चला जाएगा। ये बात बनेगी। फिर मनुष्य होना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां विचार शक्ति नहीं है, ज्ञान तो सिकुड़ गया, थिंकिंग पावर चला गया। मनुष्य में सबसे अच्छा फैक्टर कोई है तो थिंकिंग पावर का है। वो विवेक कर सकता है कि मेरी भलाई किस में है, मेरा नुकसान किस में है, इसका वो अच्छी तरह से विचार कर सकता है। देखो, गाय भैंसा पंचेंद्रिय है, संगनी मन वाला है, फिर भी रास्ते में से वो हटेगा नहीं। मनुष्य है तो ट्रक आती है, कार आती है, साइड में चलेंगे, वो तो बीच में चलेगा, बीच में खड़े रहेगा, उसको वो भान नहीं रहता है कि मुझे लग जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ज्ञान सिकुड़ जाता है, तो भलाई बुराई का विवेक नहीं रहता है। यह सबसे अच्छी बात वो है कि तुमको ऐसा मन मिला है कि जिसमें तुम विवेक कर सकता है कि तेरा कल्याण कहाँ है, तेरा अकल्याण कहाँ है। ऐसा तुमको चांस मिला, फिर भी तूने मौज मजा कर दुरुपयोग में लगाया इस मन को, कि बहुत पैसे कमाओ, बहुत मजा करो, तो ये मन का दुरुपयोग होने से कुदरत मन को छीन लेता है। बुद्धि का दुरुपयोग हुआ ना, तो ज्ञान सिकुड़ जाएगा, चला जाएगा तिर्यंच गति में, यही कारण से। तो जितने भी मन बिना के प्राणी हैं, पंचेंद्रिय, चार इंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री, चार इंद्री से तो मन होता ही नहीं, पंचेंद्री में दो जाती हैं, मन वाले भी है और मन बिना के भी है। ये चार इंद्रिय से तो मन है ही नहीं, तीन इंद्री को नहीं, दो इंद्री को नहीं, एक इंद्री, वो तो अपना भलाई बुराई का सोच करने का उसका मौका चला गया। क्यों चला गया? कि जब उसको मन मिला था, मनुष्य हुआ था, तब उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। तो आज जो भी प्राणी दिखने में आते हैं, ये चींटियां हैं, तीन इंद्री, मक्खी है, जो भी जितने भी प्राणी दिखने में आते हैं, अपने को ख्याल होना चाहिए कि मन भी, मन का दुरुपयोग होने से इनका मन चला गया है, बेचारा क्या करेगा, वो फिर अधोगति में, एक इंद्री में, निगोद में जाना पड़ता है और वहां बहुत अनंत काल तक वहां रहने का होता है, ये परिस्थिति बन जाती है। इसलिए यहां विवेक करना है और अपना आत्म कल्याण शीघ्रातिशीघ्र हो सके इतना कर लेना चाहिए। क्यों? कि आयुष्य का किसी का भी भरोसा नहीं है, हाथ में से मौका चला जाएगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि भूतकाल में हमने कैसे दोषित भाव किए हमको ही पता नहीं। कुदरत के यहाँ तो इसकी व्यवस्था है, तो जैसा किया ऐसा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होने के लिए जिसको चिंता होती है, क्या होती है, कल वो बात चली थी कि हमको रोग की चिंता होती है, क्योंकि हो सकता है कि रोग मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए तो जहां जहां भी मृत्यु का रिस्क है उसकी चिंता हम करते हैं। एक मृत्यु की चिंता बहुत करते हैं, हमको संसार में कितने भी महत्वपूर्ण काम हो लेकिन तबीयत खराब हुई, सब काम छोड़ करके हम पहले बस हम तबीयत को ठीक करेंगे। क्यों? कि बिगड़े तो और बिगड़े और बिगड़े तो और बिगड़े, तो पता नहीं आयुष पूरा हो जाए, मृत्यु का कारण बन जाए। इसलिए हम उसकी पूरी चिंता करते हैं, अधूरी नहीं करते। उसमें भी कोई गंभीर रोग होता है, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, उनकी और चिंता किया जाता है। और कैंसर का तो बात ही पूछो मत, क्योंकि इसका इलाज कोई मिला नहीं है। तो एक मृत्यु के कारण की हम इतनी चिंता करते हैं, अनंत मृत्यु आने वाले हैं इसकी चिंता नहीं करते हैं, तो हम कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ हैं। ऐसे कोई हमको मूर्ख और बेवकूफ कहे तो हमको दुख लगता है, हमारा इंसल्ट करते हैं। लेकिन देखो, एक मृत्यु की तो चिंता करते हैं और अनंत जन्म मरण की चिंता नहीं होती है। ये बात कहां की समझदारी की हुई? इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो जिसकी हुनर अच्छी है उनको ये चिंता होती है, और जिसको चिंता होती है वही चीज का इलाज करता है। जिसको भानी नहीं है कि हमको भव रोग लागू हुआ है और अनंत भव करने पड़ेंगे, वो इसका इलाज कहां से करेगा? क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं। जैसे किसी की किडनी फेल हुई, आदमी दूला पतला था, लेकिन किडनी फेल होने से क्या हुआ कि जो शरीर का पानी किडनी से बाहर जाता था, डिस्चार्ज होता था, वो होने का बंद हो जाता है। पानी शरीर में फैलता है, सूजन आती है। क्या होता है? वो दुबला आदमी को सूजन आती है तो थोड़ा तगड़ा दिखता है, अच्छा दिखता है। उसको भान नहीं है कि मेरी किडनी बिगड़ गई है तो मैं मर जाऊंगा, वो तो कांच में देखेगा, दर्पण में, अरे वाह, वो तो अच्छा दिखने लगा, राजी हो जाएगा, और राजी होने के बाद मर जाएगा। क्यों? क्यों भान नहीं है उसको। ऐसे हम कुछ अनुकूलताएं मिलती हैं, हम राजी हो जाते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं, और हमारे कर्म कैसे बनते हैं और इसका फल क्या भोगना होगा वो हमको पता ही नहीं। कितना जन्म मरण करना पड़ेगा इसका पता नहीं, और ये चार दिन की भी चांदनी नहीं पूरी। इतना लंबा काल है हमारा, अनादि अनंत आयुष का, इसमें मनुष्य बोल तो चार दिन भी नहीं है। लेकिन कर्म इतना बांधेंगे, बंधेगा कि भोगने में न जाने कितना काल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए जहां रस आता है उस जगह से निरस होना, उसका नाम उदासीनता है, उसका ही नाम वैराग्य है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बात लिया है कि जिसको अंदर से उसकी आत्मा पुकार करती है कि अरे अभी मेरा ये जन परिभ्रमण का कारण रूप परिणाम मुझे, वैसे भाव मुझे नहीं होने चाहिए, और ये चिंता जिसको चालू रही, निरंतर रही, ये सही चिंता का लक्षण है। ऊपर ऊपर से चिंता थोड़ा टाइम होती है फिर चली जाती है, थोड़े टाइम होती है फिर चली जाती है, वो सही चिंता नहीं है। निरंतर रहने वाली चिंता ही सही है। और देखो, रोग की चिंता होती है तो निरंतर होती है या नहीं होती है? वो चिंता को मिटाने के लिए कोई प्रयोग करेगा तो कोई सफल नहीं होता है। कि चलो टीवी देखो तुम, कि भाई क्या टीवी देखे, हमको कैंसर हुआ है, इसका पहले सोचो ना, यही बात करेगा। उसको बोलेगा लड्डू खाओ, लड्डू क्या खाए, कैंसर है इसका क्या करना है, वो पहले करो ना, कोई बात आएगी। तो वो चिंता, सही चिंता निरंतर रहती है, और यथार्थ चिंता नहीं है तो कभी ये बात समझ में आई है, सोचने में आई है, तो थोड़ी बहुत होगी चली जाएगी, थोड़ी बहुत होगी चली जाएगी, वो सही नहीं है। इसलिए यहां ये शब्द लिया है, निरंतर ये रहा करता है स्मरण। जैसे जैसे स्मरण ज्यादा आता है वैसे वैसे चिंता की डिग्री बढ़ती है, और चिंता की डिग्री और बढ़ती है तभी इसका इलाज मिलता है, वहां तक इसका इलाज नहीं मिलता। ये मोक्ष मार्ग सभी को नहीं मिलता, किसी को ही मिलता है, जिस किसी को इसकी बहुत चिंता हुई उसको ही मिलता है, क्योंकि इसकी सही खोज वही करेगा, दूसरा इसकी सही खोज में जाएगा ही नहीं, उसके तो परिणाम और जगह लगते रहेंगे फालतू के छोटी मोटी बातों में, छोटे मोटे उदय में, वहीं रुकेगा वो, क्योंकि चिंता नहीं है तो रुकना हो ही जाएगा। इसलिए वो बात कर चली थी। और स्मरण होता है वही भी अंतर ज्ञान से लेना, दूसरा पैराग्राफ है। पुनस्मरण होता है वो भी अंतर से होता है, अंदर से आया आत्मा में से, कि ऐसा परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए हमारे जीव को उदासीनता क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं आई, हमने रस क्यों लिया, स्वच्छंद के परिणाम करते हुए हमने, हमको निरस होना चाहिए था, हमने कैसे रस ले लिया, ये पश्चाताप का परिणाम है। जो पूर्व में दोष हुए वो तो हो गए, उनको मिटाने के लिए या उनको धोने के लिए पश्चाताप के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे एक कवि हुए थे, वो हाइनेस थे, महाराजा लाठी के, लाठी दरबार कलापी, उसका निकनेम है कलापी, नाम तो कहीं ग्रशन है, सूर सिंह जी सदा सिंह जी गोहिल, इन्हें पुतानु नाम कलापी रखो, कवि हृदय तो बहु काव्यो लिखा है, मैंने लिखो छे, हा पछतावो विपुल जरणो स्वर्ग थी उतरुए, पापी ते मा डुबकी दईने पुण्यशाली बने छे। हा पछतावो मैंने, अरे हा मैंने, अरे पश्चाताप, विपुल जरणो बहुत बड़ा जरा है, हाँ? पानी का जैसे धोध होता है, स्वर्ग से आया वो, क्या से आया, स्वर्ग से उतरूं, उतरा मैंने नीचे आया, पापी उसमें डुबकी देता है और बाहर निकलता है तो पुण्यशाली, इसको पाप धो जाता है, पाप की धुलाई हो जाती है। वो कवि भी था और फिलोसोफर भी था, ऐसा व्यक्ति कम होता है, लेकिन कोई पूर्व संस्कार के कारण से वो कवि भी था और फिलोसोफर भी था, तो उसने कुछ काव्य हैं वो फिलोसॉफी के बारे में भी लिखे हैं। अपना तो पॉइंट ही वो बात है कि भूतकाल में जो भी हमारे से दोष हुआ उसकी धुलाई कैसे हो, उसको हमको साफ करना है। वैसे तो कम हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है तो फूट जाता है और इसका कोई इलाज नहीं होता, नुकसान हो गया सो हो गया। लेकिन यह इसका भी इलाज है, ज्ञानियों ने इसका इलाज भी दिखाया है कि पश्चाताप है कोई इसका इलाज है। और जब ये पश्चाताप बहुत आता है तब रोना आता है। क्या आता है? उसको कहते हैं चिंतना की डिग्री बढ़ते हुए वेदना हुई। क्या हुई? वेदना हुई, दर्द हुआ। पूर्व के दोष का दर्द वर्तमान में होने से जो कर्म बंधे थे उसकी धुलाई हो जाती है, उसको भोगना नहीं पड़ता, वरना भोगना ही पड़ेगा। वेदना आनी चाहिए और जोर से आनी चाहिए और जितनी लंबी चले उतना अच्छा है। सही वेदना आती है तो असह्य वेदना आती है। कैसे? असहन नहीं कर सके ऐसी वेदना आती थी। और कभी कभी मुमुक्षु को ऐसा हो जाता है कि अरे असह्य वेदना मिट जाए तो अच्छा है, कम हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जितनी वेदना बढ़ेगी उतना ही निर्मलता आएगी, क्योंकि दोष की धुलाई हो जाएगी, मलिनता धुलाई हो जाएगी। वरना मलिनता के थर के थर, थर क्या बोलते हैं,
पर
जमे हुए रहेंगे। और जैसे बहुत पुराना जंग निकलता नहीं वैसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सही इलाज वो ये है कि फिर वो स्मरण आता है कि अरे बहुत दोषी दोष भाव करके जन्म मरण बहुत किए, मुझे मेरे को क्यों ऐसा रस आया, क्यों ऐसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कर करके उसको फूट फूट करके रोना आता है। क्यों? कि उसने मैंने स्वच्छंद किया। स्वच्छंद संसार के जीव ऐसे करते हैं, तीव्र विषय कषाय के परिणाम, पंचेंद्रिय के विषय और कषाय के परिणाम कंट्रोल में नहीं रहे, इतना कितना अनकंट्रोल्ड, उसको कहते हैं स्वच्छंद। हिचकिचाहट नहीं हो गए कि अरे ये दोष करने से मुझे क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं स्वच्छंद। वो एक प्रकार का स्वच्छंद है। दूसरा प्रकार का स्वच्छंद धर्म के क्षेत्र में जीव कर बैठता है, वो इस प्रकार से करता है कि मोक्ष पाने का ज्ञानी जो रास्ता बताते हैं, सही रास्ता अपने अनुभव से, उसको समझने की दरकार नहीं करता और अपनी मनमानी करके साधन बैठता है। कोई त्यागी हो जाता है, कोई दीक्षा ले लेता है, कोई पूजा भक्ति में लगे रहते हैं, कोई दयादान में लगे रहते हैं, कोई यात्रा आदि में लगे रहते हैं, कोई शास्त्र पढ़ने में चढ़ जाते हैं, वो भी स्वच्छंद है। अपनी मति कल्पना से धर्म साधन करना वो भी स्वच्छंद है। संसार में हम ऐसे नहीं करते। जैसे हमारे कोई संबंधी रिश्तेदार आए और हमको कहेंगे कि हमारा तो बिजनेस हीरे का है, डायमंड का है और बहुत पैसा कमाते हैं हम लोग, और डायमंड के व्यापारी पैसे वाले ही होते हैं, दुनिया में खुली बात है वो जगत में, फिर भी सब करते हैं क्या? क्यों? कि वो बिजनेस करने के लिए भी हमारी सूझबूझ होनी चाहिए। तो हम कोई भी पैसे कमाने का भी बिजनेस तरीका बताएंगे तो भी हम वैसे ही साहस नहीं करते, पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके अनुभव को समझते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, और जहां भी हम काम कर रहे हैं उसकी मार्केट सर्वे करते हैं। मैंने पानी एक कपड़े से छानते हैं, बिजनेस की बात सात कपड़े से छानेंगे फिर बिजनेस करेंगे। क्यों? कि इसमें गलती होती है तो हमारी जो पूंजी है, जो लगाई है, वो कैपिटल चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा मेरा। तो वहां तो हम पूरी छानबीन करके काम करते हैं। अरे एक मिट्टी की रोटी पाने की तावड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं, आपको तवा बोलेंगे क्या? तवा बोलते हैं। 2 रुपया का आता है, 1.5 रुपये का इस जमाने में, पहले 12 आने का आता था, फिर 8 आने का भी आता था, 0.5 रुपये का। तो हम उसको टुकड़ा मार के लेंगे। क्यों? कि बहुत बारीक उसमें दरार हो तो दिखे नहीं, लेकिन आवाज से पता चल जाए। इतनी परीक्षा करते हैं हम 2 रुपये की चीज में, 1.5 रुपये की चीज में। और धर्म तो हमारे 1.5 रुपये से भी गया बीता समझो, हम कुछ परीक्षा नहीं करते। हमारे पिताजी पूजा करते हैं तो हम करने लगे, हमारे पिताजी शास्त्र पढ़ते थे तो हम पढ़ने लगे। जो भी जिसको मन में आए, हमारे हमारे परिवार में तो दीक्षा त्याग बहुत है तो हम त्याग करते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलता इसमें। ये भी एक टेक्निकल लाइन है और हाईली टेक्निकल है, ये ऐसा नहीं है, उसको पूरी तरह से समझना चाहिए सत्संग के दौरान, और फिर उसका एग्जीक्यूशन है, उसका डिसीशन है, वो बराबर यथास्थान सोच समझ करके लेना पड़ता है, तभी उसमें सक्सेस मिलता है। वरना ये स्वच्छंद होता है और इस स्वच्छंद से परिभ्रमण चालू रहता है। थोड़ा बहुत पुण्य होएगा, कुछ साधन किए, वो पुण्य के फल भोगते वक्त पाप होएगा और चला जाएगा अधोगति में, ये बात बनने वाली है। इसलिए जो भी करना है वो समझदारी से करना है, बिना समझे कुछ नहीं करना है। जैसे हम बिजनेस में बिना समझे नहीं करते, वैसे यहां इससे भी अधिक जागृति और अधिक दरकार और अधिक सावधानी हमारी होनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमने स्वच्छंद में संसार में क्या किया कि दूसरे जीवों के प्रति क्रोध किया, कभी बहुत क्रोध किया, कभी मान किया तो बहुत मान किया, कभी मायाचारी किया, माया सारी तो समझते क्षेत्रपिंडी तो बहुत किया। हमने श्रवण बुलबुला में किया था, श्रवण बुलबुला में बात चली थी, कहाँ चली थी? सोने चांदी के व्यापारी को मायाचारी ज्यादा होता है। क्यों? कि वहां मिलावट का ही धंधा है ना? और सच्ची मिलावट कोई बताता है क्या? है नहीं बताएगा, बताएगा तो कहां से कमाएगा? अगला हिसाब करके काम करेगा क्या? नहीं, रोजाना उसको ये करना पड़ता है। सोने के लिए, सोनी बोलते हैं जो सोने का कढ़ाई करता है, उसके लिए तो हमारे यहाँ कहवत है कि उसकी सगी माँ का जेवर आएगा ना
उसमें
भी गड़बड़ करेगा, वो चोरी करेगा, छोड़ेगा नहीं उसको। ये हमारे गुजराती में कहवत है। इसका माइंड ऐसा हो जाता है, इसका अभिप्राय ऐसा, इसके बिना कमाई होती ही नहीं। और मायाचारी के फल में पशु गति है, चार गति में से पशु गति, मैंने टेढ़ा शरीर मिलेगा। बात चली थी कोइंबतूर में, चली थी कोइंबतूर में, बात चलते चलते कभी आ जाती है। इसलिए बिजनेस करना जिसमें कम से कम पाप होवे, ऐसा निष्पाप बिजनेस करना, क्या विवेक करना है हमको। बिजनेस किया बिना तो पेट भरेगा नहीं, पेट भरे बिना तो हमारे परिणाम टिकेंगे नीचे, बहुत बिगड़ जाएंगे भूखे भूखे तो। तो ये तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ करे उसमें कम से कम दोष होवे, दोष तो होएगा थोड़ा बहुत, लेकिन कम होवे, जितना कम होवे ऐसा सिलेक्शन हमको करना चाहिए। ये हमारा विवेक का काम है, वरना फल तो भोगना ही पड़ेगा। कुदरत की व्यवस्था किसी को छोड़ती नहीं है। हम चावल बोएंगे चावल मिलेंगे, और ज्वार बोएंगे तो ज्वार मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं बनता कि बोए ज्वार और चावल ऊपर आ जाए, ऐसा तो कभी, कुदरत की व्यवस्था ही ऐसी है, जैसा बोया वैसा ही लेना है। और भोगना पड़ता है अकेले को। हम क्या समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी सारे परिवार की है, ये पांच दस पंद्रह भरना है तो हमको सब कुछ करना पड़ेगा। करेंगे हम अकेले, भोगेंगे भी इसका फल हम अकेले, ये और नुकसान की बात है। ये रामायण है ना, इसमें दो रामायण है, एक वाल्मीकि एक तुलसीकृत तुलसीदास जी की। उसमें जो वाल्मीकि ऋषि हुए, बहुत अच्छे रामायण लिखा है उसने। ये मूल में तो लुटेरा था, वालियो लुटारो तरीके प्रसिद्ध तो है। क्या करता था ये, जंगल में कोई भी, पहले तो पैदल चलते थे ना लोग, जाते थे या बैलगाड़ी लेकर के जाते थे, घोड़ा लेकर के जाते थे, लूट करता था, मार मार के ले लेता था पैसा। लूट करने वाला पहले क्या करता है, पहला मारता है, तो क्या है, डर जाते हैं लोग, फिर सब कुछ लूट लेते हैं, ऐसा होता है। को बहुत लूट का धंधा करता था। एक सज्जन आदमी उसको मिल गया, तो करता है इतना बड़ा पाप, तो किसके लिए करता है, तेरे पेट भरने के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। तो कहने, मेरा परिवार भी है तो परिवार के लिए, हाँ तो भोगेगा कौन, तो कि सब भोगेंगे, क्योंकि पैसा लूट का पैसा सब खाता है। तो कहने, तुम पूछो, घर पे जाके पूछ लो कि भाई ये पाप मैं करता हूँ, इसका बंटवारा होगा कि नहीं होगा, पैसा का तो होता है, सबों ने ना दे दिया। तो उसने क्या बोला पहले, जिसने वो बताया उसके लिए वो क्या बोला, अच्छा तुम भागने के लिए छूटने के लिए हमको घर बेचता है। तो कह, देखो ऐसा नहीं है, हमको पेड़ के साथ रस्सी से बांध लो, तुम हम छटक के नहीं जाए, वो तुम घर जाके आओ, हम बंधन में रहना चाहते हैं। तो उसको विश्वास आ गया, वरना तो इसको छोड़ेगा कैसे। वो मेरे परिवार वाले मेरे सगे नहीं है, मजा करने में सब सगे हैं, दुख भोगने में कोई साथ में आने का हाँ बोलते नहीं है। तो उसको वैराग्य आ गया, फिर वो मुनि हो गया, फिर उसने रामायण लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी है। ऐसा बोलने में आता है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, फिर किसी को रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसी लिखा, ऐसा बोलते हैं।
वैसे हम चाहे कोई पाप वाला धंधा करें, चाहे थोड़ा कम पाप वाला करें, पुण्य तो जितना होगा उतना ही मिलेगा ना, भी कुछ फर्क भी पड़ सकता है ज्यादा पाप वाला
हैं।
ऐसे हम कोई पाप वाला धंधा करें जिसमें ज्यादा पाप हो, और एक ऐसा धंधा है कम पाप हो, तो हमारा पुण्य जितना है उतना ही मिलेगा कि पाप वाले थोड़ा ज्यादा मिल जाए?
नहीं नहीं नहीं, जितना पूर्व प्रारब्ध है उतना ही पैसा मिलता है, पाप के अनुपात में ज्यादा नहीं मिलता, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसको जितना पूर्व पुण्य का फल आएगा उतना ही आएगा। और हम तो, हमने तो देखा है हमारे बाजार में बहुत पाप करने वाले को कम मिले, और बहुत ज्यादा धंधा करने वाले को कम मिले, और थोड़े करने वाले को ज्यादा मिले। वो तो नजर के सामने है कि नहीं है, इसलिए वो तो सबको प्रारब्ध की बात है, लेकिन भरोसा नहीं है। और कर्ता बुद्धि से करता है जीव, वो करता है तो भोगना पड़ता है। लोभ करते हुए, माया करते हुए, या कुछ भी खोटा काम करते हुए, ये बुरा है मेरे लिए, मेरा नुकसान का कारण है, ऐसा यथा योग्य क्यों नहीं जाना, उसका पश्चाताप होता है। मैंने क्यों नहीं जाना ऐसा, अर्थात ऐसा मुझे जानना चाहिए था, फिर भी मैंने नहीं जाना, और ये परिभ्रमण का कारण बना। वो बात स्मरण में आते ही पश्चाताप से वेदना आती है, ये वेदना का पॉइंट है। पुनस्मरण होता है, बार बार इस बात का स्मरण होता है और वेदना आती है, अरे हमको ऐसा क्यों हुआ, हमको ऐसा भूतकाल में क्यों हुआ, ये हमको नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों किया, ये फूट फूट करके रोएगा, तब इसकी धुलाई होगी। तो ऐसा शुरू में नियम डालते हैं, उसमें ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, फिर और भी दो पैराग्राफ है कैसे कैसे होते हैं। तो ये बात लिया कषाय का, फिर एक मोह का विषय लिया है, और फिर एक द्वेष का भी विषय लिया है। ऐसे परिणाम आते हैं वेदना के, चिंतना के, फिर निर्धार होता है मोक्ष के लिए, वही सच्चा मुमुक्षु बनता है। तो निर्धार होने में कैसे परिणाम होते हैं, वो भी श्रीमद जी ने अपने अनुभव से लिखा है। लगता है कि खुद को ऐसे परिणाम हुए होंगे, जैसे एग्जैक्ट इसका डिस्क्रिप्शन आया है, अपने अनुभव की बात लिखी होगी, ऐसा लगता है। तो यहाँ तक रखें, फिर आगे का कर लेंगे।
वैशी कोई पन जीव में कैंसर जो रोग हो, तो इन्हें चिंता है किनके लिए मृत्यु देखा की हो। तो वैशी कोई पन मुमुक्षु जीव ने लागे कि ना अनंत काल तक मृत्यु देखा की हो, इसे तो ये ने परिभ्रमण की हम चिंता नहीं
हो। नहीं 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 दिखाने समझ में आवाज छता दिखाने नहीं थी, दिखाई तो चिंता ऑटोमेटिक था, करावी पड़े नहीं। कैंसर था, डॉक्टर डायग्नोस करे तो एने चिंता करवी पड़े थे, थई जाए छे ने, एम आमा पण थई जाए, नेचरल बात एम छे, नथी थती अननेचरल छे।
शुं छे कैंसर वाला जीवने खबर होय छे कि अमुक टाइम पछी मरवानो छे, अने मुमुक्ष जीवने पण एम अंदर थी खबर होय छे कि अगर ई आत्मकल्याण नहीं करे तो एने
ખબર પડ્યા છતાં નથી આવતી, નહીતર તો આવ્યા વગર રહીએ જ નહીં, પણ એને ખબર પડી છે, એમાં એને પોતાની જાતને ઇન્વોલ્વ નથી કરી, જેને કોકની વાત સાંભળતો હોય, જેમ કોઈને કેન્સર થાય તો થાય છે ચિંતા, એમ જેને કોકનું પરિભ્રમણ થવાનું છે એવું એને લાગે છે, મારું થાય છે એમ લાગે તો ચિંતા થયા વગર રહીએ નહીં. ભૂલ થાય છે, સમજવા સમજવામાં આ ભૂલ થાય છે. પરલક્ષી જ્ઞાનમાં પોતાનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી આવતો અને એટલે એનું ફિલિંગ નથી આવતો, એમ થાય છે. મૂળમાં વાત આમ છે.